नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा आज फिर शुरू हुई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण विधेयक नहीं है और इसका महिला सशक्तिकरण से कोई लेना देना नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर टिप्पणी की निंदा करते हुए श्री राहुल गांधी से माफी की मांग की। श्री राजनाथ ने राहुल गांधी के भाषण से ऐसी टिप्पणियां हटाने को कहा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी राहुल गांधी की निंदा करते हुए उनकी टिप्पणियों को असंसदीय बताया और उनसे प्रक्रिया नियमों के अनुसार विधेयक पर बोलने को कहा। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण किसी प्रकार का एहसान नहीं बल्कि समाज में उनके योगदान की उचित मान्यता के रूप में देखा जाना चाहिए। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल देश में विकास की भागीदार हैं बल्कि राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि सदियों से महिलाओं ने बिना किसी पहचान की भावना के परिवारों और समुदायों को सशक्त बनाया है। डीएमके की कनिमोई ने कहा कि केंद्र द्वारा 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को कल रात अधिसूचित करना चौंकाने वाला है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का ये एक ऐतिहासिक अवसर है। अब से कुछ देर बाद गृहमंत्री अमित शाह चर्चा का जवाब देंगे। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद देश भर में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति स्थिर है। नई दिल्ली में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि अब तक 5 किलो वाले 16,50,000 से अधिक सिलेंडर बेचे जा चुके हैं।
घरेलू एलपीजी के संबंध में किसी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। कल भी हमने लगभग 50 लाख से अधिक घरों में एलपीजी का सिलेंडर पहुंचाया है। हमारा ऑनलाइन बुकिंग 98% है और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ डिलीवरी लगभग 93% है। कमर्शियल एलपीजी भी 70% तक रेस्टोर्ड है और कल लगभग 8,200 टन कमर्शियल एलपीजी की भी सेल हुई है।
पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि अब तक 2,400 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए शीघ्र ही समझौता हो सकता है। उन्होंने समझौते की कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं बताई। ट्रंप ने कहा कि अगले सप्ताह समाप्त हो रहा या 2 सप्ताह का युद्ध विराम आगे बढ़ाया जा सकता है। इस बीच ईरान के उप विदेश मंत्री ने अस्थायी युद्ध विराम का विचार पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर है। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने कूचबिहार में चुनावी रैली की। दुर्गापुर और कोलकाता में भी उनकी जनसभाएं होंगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जनता तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर देगी। तमिलनाडु में डीएमके पार्टी नेता और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने स्वतंत्रता सेनानी धीरन चिन्नामलाई की 271वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ प्रचार अभियान की शुरुआत की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके महासचिव इडापड्डी के पलनीसामी ने भी धीरन चिन्नामलाई को श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड में हजारीबाग जिले के पिपरवार केरेदारी क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए। इनमें माओवादी कमांडर सहदेव महतो भी शामिल हैं। उन पर 15 लाख रुपए का इनाम था। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने आज नई दिल्ली में दिव्य भारत, भारत की आत्मा की एक झलक का विमोचन किया। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष भर चलने वाले पर्यटन कार्यक्रमों का विवरण है। पर्यटन मंत्रालय के सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि देखो अपना देश, स्वदेश दर्शन जैसी पहलें पर्यटन को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों को दर्शाती हैं। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 505 अंक बढ़कर 78,494 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 157 अंक बढ़कर 24,354 पर आ गया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।